हरे कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 6 टेक्स्ट नंबर 30। ये बहुत ही प्यारा श्लोक है, मुझे बहुत पसंद लगता है। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। भगवान कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। शब्दों का अर्थ, यो यह अर्थ जो मां मुझे पश्यति देखता है सर्वत्र सब जगह पर, सर्वम प्रत्येक वस्तु को च तथा मई मुझ में पश्यति यानी देखता है, तस्य उसके लिए अहम में न नहीं प्रणश्यामि अदृश्य होता हूँ, सच वह भी मैं मेरे लिए न नहीं प्रणश्यति अदृश्य होता है। अनुवाद, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उनके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत होता है, किंतु वह प्रत्येक दिशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है। ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है, आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं, और भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित होता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंगा संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होता है। कृष्ण में तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय या आत्म विनाश है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता 5.38 में कहा गया है, प्रेमंजना छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यं श्याम सुन्दरमचिन्त्य गुण स्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अर्थात, मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जा सकते हैं। इस अवस्था में ना तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होता है और न भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्व पदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वशमाश श्रीरूपं साकृजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गारंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरि भये वंशाकल्पतरुभयस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं श्रीवासुदी गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। छठा अध्याय श्लोक नंबर 30 अत्यंत ही सुंदर श्लोक है। भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, यो मना जो माम मना मुझे पश्यति सर्वत्र, पश्यति यानी देखता है सर्वत्र हर जगह पर। भगवान कहते हैं जो मुझे हर जगह देखता है और सर्वम च मयि पश्यति और सारी चीजों को मुझ में देखता है। अब जो ऐसा करते हैं, पहले भगवान ने क्या कहा, सर्वभूतस्थमात्मानम् सर्वभूतानि चात्मनि, सारे जीवों में परमात्मा को देखता है और परमात्मा में सारे जीवों को देखता है। लेकिन आज भगवान क्या बोल रहे हैं, मुझे, माम का मतलब होता है मुझे। अब भगवान अपनी बारे में बता रहे हैं, माम जब भगवान कहते हैं ना तो मतलब भगवान अपने विषय में कह रहे हैं कि पहले तो भगवान ने कहा है इक्षते योग युक्ता नाम सर्वत्र समदर्शन, कि जो वास्तविक योगी होता है समस्त जीवों में मुझको देखता है, मुझ में समस्त जीवों को देखता है और निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। है ना, भगवान यहाँ पर परमात्मा की बात हो रही है कि क्योंकि सारे जीवों के अंदर परमात्मा होता है ना, तो योगी सबके अंदर परमात्मा देखता है और परमात्मा के अंदर सब, लेकिन आज भगवान ने माम कहा है। ठीक है, तो भगवान क्या कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे हर जगह देखता है, हर चीज मुझ में देखता है, तस्याहम न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ और ना ही वह मेरे लिए अदृश्य होता है। वास्तव में भक्तों इस श्लोक में भगवान ने बहुत ही बड़ा आश्वासन दिया है। ये श्लोक बहुत बड़ा आश्वासनीय है भक्त जनों के लिए। वास्तव में अब जाहिर सी बात है ये योगी की बात हो रही है, भगवान योगी के विषय में बता रहे हैं, लेकिन योग की पराकाष्ठा परमात्मा के बाद कृष्ण प्राप्ति है ना। कृष्ण पर अपनी नजरें जमानी है कि कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखना है। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो हर जगह केवल मुझे देखता है। परंतु हम हर जगह भगवान को नहीं देख सकते है ना, क्यों, क्योंकि हमारी भौतिक दृष्टि है। अब भौतिक दृष्टि से भौतिक वस्तुओं को देखते हैं तो भौतिक ही दिखती है ना, उसमें पर भगवान तो दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते, भगवान कहते हैं 7.25 में भगवान कहते हैं नाहम प्रकाशः सर्वत्र योग माया समावता, मैं हर किसी के सामने प्रकट नहीं होता हूँ और मैं अपनी योग माया से आच्छादित हो जाता हूँ, इसलिए मूढ़ो यम नाभि जानन्ति, जो जो मूढ़ होते हैं वो मुझे नहीं जान सकते कि मैं ही लोको माम अजम अव्ययम, कि मैं अजम अजन्मा हूँ, मैं अव्यय हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरे विषय में मूढ़ लोग नहीं जान सकते। क्यों, क्योंकि वो जानना नहीं चाहते हैं। जो भगवान को देख नहीं सकते, भगवान सर्वत्र हैं, भगवान कण कण में हैं, भगवान हर जगह हैं, जो भक्त देख रहे हैं इसका मतलब है भगवान है ना। अब हैं लेकिन फिर भी जैसे दिखाई नहीं दे रहे तो इसका क्या अर्थ है, क्योंकि वो देखना चाहता नहीं है। हम अपने हृदय में हृदय हाथ रख के बोले कि हम कितना भगवान को देखना चाहते हैं और कितना संसार को देखना चाहते हैं, कितना हमारा संसार के प्रति आकर्षण है और कितना भगवान के प्रति आकर्षण है, कितना हम संसार के साथ अपने रिलेशंस को निभाते हैं और कितना भगवान के साथ अपने रिलेशन को निभा रहे हैं। वास्तव में भक्तों, जब तक, क्योंकि अभी हमारा भौतिक वस्तुओं में, भौतिक व्यक्तियों की ओर आकर्षण बहुत तीव्र है, जन्म जन्मांतर से भौतिकता में गिरे हुए हैं, इसी अभी तक हमें भगवान का साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतम में पहला स्कंद छठा अध्याय श्लोक नंबर 21 में भगवान कहते हैं, अविपक्क कषायणा दुर्दर्शोहम कुयोगिनम। जो अविपक्क होते हैं यानी जो अभी तक अप्रौढ़ होते हैं, जो भक्ति में स्थित नहीं हुए हैं, अभी तक जिनकी भक्ति प्रौढ़ नहीं हुई है, और कषायणा जिनके हृदय के अंदर अभी तक भौतिक कलमश भरे हुए होते हैं, दुर्दर्शोहम। दुर्दर्शो का मतलब होता है कि उनके लिए बहुत कठिन है देख पाना। कुयोगिना, जो अभी तक सेवा में पूर्ण नहीं हुए, जिन्होंने अपनी सेवा अभी तक, कुयोगिना अर्थात जिन्होंने अभी तक अपनी सेवा को परिपक्व नहीं किया है, सुदृढ़ नहीं किया है, उनके लिए दुर्दर्शो, हाँ मुझे देखना बहुत ज्यादा कठिन है। यानी भगवान कह रहे हैं कि जो भक्ति में, जो सेवा, अभी जो मेरी भक्ति करेगा वो मुझे देख सकता है। तो भक्ति का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ भक्ति? भक्ति का मतलब होता है सेवा भाव। कितना हम भगवान के प्रति सेवा भाव रखते हैं। जैसे ऐसा नहीं है भक्ति का मतलब कि आप केवल भगवान को देखते रहो, सुबह आओ मंदिर में भगवान के दर्शन करो, फिर दर्शन करो बस वापस भगवान, शाम को दर्शन करो, आज मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। केवल दर्शन करना ही नहीं काफी, सेवा भाव काफी है। सेवा भाव होना चाहिए। जैसे अर्जुन भगवान के भक्त हैं, ठीक है, लेकिन सारा दिन ऐसा तो नहीं करते खाली बस भगवान के सामने खड़े हाथ जोड़ करके मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूँ बस काफी, वो हर वक्त सेवा के लिए। हनुमान जी को देख लीजिए, हर समय कुछ न कुछ सेवा चाहिए। क्या दर्शन करना काफी अगर होता तो सदैव भगवान के साथ रहते ना, लेकिन हमेशा भगवान के पास आते हैं और फौरन से कोई ना कोई सेवा उनको प्राप्त होती है और भगवान की सेवा करते हैं। और फिर सेवा भाव जिसके अंदर होता है, फिर वो चाहे कोई भी कार्य कर रहा है, भले भौतिक भी अपना कोई कार्य कर रहा होता है, तो भी श्री प्रभुपाद जी ने बताया यहाँ पर, ऐसा व्यक्ति ही प्रकृति की, भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता है, किंतु वह प्रत्येक दिशा में कृष्ण भावनामृत से अवगत होता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। यानी कि वो कार्य भले कोई भी कर रहा हो, लेकिन उसे पता है जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ वो क्योंकि कृष्ण की शक्ति, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ। तो फिर वो भले ही वो सारा टाइम भगवान के सामने खड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी उसका जो मन है वो सदैव कृष्ण के अंदर लगा हुआ होता है, वो सदैव कृष्ण के दर्शन प्राप्त कर सकता है। अब यानी कि भक्ति का क्या मतलब होता है? सेवा भाव। और सेवा भाव में हमें भगवान की भक्ति किस तरह से करनी चाहिए? तो शास्त्र कहता है कि भगवान की नवधा भक्ति करनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये नवधा भक्ति है जो स्टार्ट होती है श्रवण करने से और कीर्तन करने से। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि भक्ति का मतलब होता है सेवा करना, और ये नाम जप करना या फिर कथा श्रवण करना, ये कौन सी सेवा है? ये तो कौन सी सेवा हुई, है ना? स्मरण करना, उसको याद करना, ये सेवा तो नहीं हुई ना। सेवा का मतलब हमें कैसा लगता है कि हम उसके लिए कुछ कार्य कर रहे हो ना, जैसे उसके मतलब उसका पर्सनली कोई सेवा का मतलब कैसे लगता है ना कि पर्सनली उसकी सेवा करना, तो नाम जप करना, कथा श्रवण करना या उसका स्मरण करना सेवा कैसे है? वास्तव में भक्तो, कृष्ण के विषय में आपको बताऊं, कृष्ण एक बड़े ही अभिमानी व्यक्ति हैं। अब असाधारण हम प्राणी हैं, हम यदि अभिमान करते हैं तो यह अपराध होता है, लेकिन वो भगवान है ना, उनका अधिकार है, वो जो चाहे करें। अब अभिमानी व्यक्ति को अपनी प्रशंसा सुनने में बड़ा आनंद आता है। जैसे एक बड़ा राजा होता है तो वो कुछ व्यक्ति अपने कविता गाने के लिए रखता है कि भाई कुछ लोग मेरी कविताएं गाना, मेरे बारे में बहुत बहुत मेरी प्रशंसा करना, ताकि उसको अच्छा लगता है अपने बारे में सुनना। फिर कुछ लोग वहां पर बैठे होते हैं, सदैव शेर बनाते हैं, राजा की तारीफें करते रहते हैं। तो इसलिए भगवान, चूंकि अब भगवान समग्र सृष्टि के राजा हैं, तो उन्हें भी अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है। जैसे हम साधारण व्यक्ति हैं और हम भी कभी ना, हमें भी कोई कमेंट्स मिलते हैं, आप कितने अच्छे लग रहे हो, आपने ये कार्य कितना अच्छा किया, ऐसे व्हाट्सएप पे अक्सर है ना ऐसे वाव वाला सिंबल आता है या फिर क्लैपिंग वाला आता है ऐसा, तो फिर हमें कितना अच्छा लगता है कि मेरी तारीफ हो रही है। तो हम लोग क्योंकि सेवक हैं, हमें इससे प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होना चाहिए, सेवक को सदैव सेवा भाव में रहना चाहिए। लेकिन जो सेव मतलब जो मालिक है, जो स्वामी है, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी सदैव प्रशंसा करनी चाहिए, उसका नाम। अब देखो साधारण लोग को भी अपना नाम की वाह-वाह सुनना अच्छा लगता है, लेकिन वो अपराध है। ये बात समझने की है कि यदि हम कोई अपने बारे में प्रशंसा सुनने का प्रयास करेंगे या फिर अपने कार्य के लिए वाह-वाह सुनना चाहेंगे या फिर अपनी तारीफ सुनना चाहेंगे, अपने विषय में कुछ श्रवण करेंगे ना कि अच्छा सा, तो हमारे अंदर अभिमान आ जाएगा। और हम क्योंकि दास हैं, दास को अभिमान शोभा नहीं देता, लेकिन भगवान तो स्वामी है, तो भगवान को अपनी प्रशंसा, अपना नाम सुनना बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो क्योंकि उनका अधिकार है, वो भगवान है, तो फिर ये हम जो भगवान के विषय में श्रवण कर रहे हैं ना, तो जो सबसे अच्छा, ज्यादा से ज्यादा जो अच्छा भगवान की तारीफ करता है, भगवान की प्रशंसा करता है, भगवान के कार्यकलापों को, भगवान की लीलाओं को, भगवान के नाम को बहुत ही अच्छे और प्रिय ढंग से बताता है और दूसरों को भगवान की ओर आकर्षण। अब कृष्ण का नाम है कृष्ण, और कृष्ण का मतलब होता है आकर्षण करने वाला, है ना। लेकिन ये भक्ति जो है, भक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या है, ये कृष्ण को भी अपनी ओर आकर्षित करती है ना? भगवान के पवित्र नाम का जप करना, भगवान की कथाओं को श्रवण करना, भगवान को स्मरण करना, और ये सब जो भक्ति है वो भगवान को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। और फिर जब भगवान आकर्षित हो गए ना, एक बार हमारी भक्ति से प्रसन्न हो गए, फिर हमें हर जगह, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति, जैसे गोपियां हर जगह भगवान को देखती थी, उन्हें भगवान जब थोड़ी देर के लिए भी जाते थे तो भी वो भगवान की लीला, मतलब भले वो विरह भाव में भी हर जगह भगवान को ही देखती थी। कब आएंगे, यहाँ से आएंगे, अभी यहाँ से ही आएंगे देखना, मैं अब मुझे पता है आज तो इतने थके हुए होंगे, आज मैं उसके लिए मक्खन बना के खड़ी हूँ, मैं जैसे ही आएंगे ना यहाँ से मैं उनको मक्खन खिलाऊंगी। वो बोलेगी नहीं नहीं अभी मक्खन नहीं खिलाऊंगी, मैं उसके लिए छाछ बनाई है, इतनी अच्छी छाछ है, आते ही पिएगा और थकान दूर हो जाएगी। मतलब वो नहीं भी होता है तो भी हृदय के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर केवल उसका विचार है। और भगवान कहते हैं तस्याहम न प्रणश्यामि, मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता हूँ, मैं उस भले ही भौतिक वस्तुओं को वो देखता है, लेकिन फिर भी उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी चेतना केवल मुझ में टिकी हुई होती है, और सच में न प्रणश्यति, मेरे लिए वो कभी भी अदृश्य नहीं होता है। जैसे महाप्रभु, महाप्रभु यदि किसी नदी को देखते थे तो उनको ऐसा लगता था कि ये यमुना है, जब किसी पर्वत को देखते थे तो उनको लगता था कि ये गोवर्धन है, जब किसी वन को देखते थे तो उनको ऐसा लगता था कि शायद ये वृंदावन है, और वो प्रेम करते थे एक एक वृक्ष को, एक एक पत्थर को, एक एक नदी को। क्या ये पागलपन है? नहीं, ये पागलपन नहीं है, ये दिव्य उन्माद है। जैसे अगर महाप्रभु हर वन को देखकर ये बोलते हैं कि ये वन वृंदावन है, तो क्या वो वाकई में वृंदावन है? क्या महाप्रभु सही में उसको बोल रहे हैं कि वृंदावन है, या महाप्रभु गलत बोल रहे हैं कि नहीं ये वृंदावन नहीं है? आप बताइए। अगर वाकई में महाप्रभु बोल रहे हैं कि ये वृंदावन है, अगर वो वाकई में वृंदावन है, तो महाप्रभु आगे क्यों जा रहे हैं? वहीं पर क्यों नहीं स्टे करते? क्यों आगे जा रहे हैं वृंदावन की ओर? और अगर वो वृंदावन नहीं है, तो क्या महाप्रभु गलती कर रहे हैं उसे वृंदावन बोलकर? वास्तव में भक्तों, ये दिव्य उन्माद है, ये प्रेम के लक्षण है। हमारी भौतिक बुद्धि से इसको परखा नहीं जा सकता। भौतिक बुद्धि से यदि हम किसी भी साधारण वन को कहते हैं कि ये वृंदावन है, तो फिर वो हमारी बहुत बड़ी गलती है। हर वन वृंदावन नहीं होता, लेकिन जब दिव्य प्रेम का उन्माद हो जाता है, तो भक्त को हर एक जगह पर कृष्ण से रिलेटेड वस्तु दिखती है। वो साधारण व्यक्तियों को, साधारण वस्तुओं को, साधारण स्पेस, जो भी जगहें वगैरह हैं, उनमें भी केवल भगवान की अभिव्यक्ति को रियलाइज करते हैं। यही स्टेज को भगवान यहाँ पर बताते हैं कि जो प्रेम की परिपक्व अवस्था में आ जाता है, उसके लिए फिर मैं बहुत सरल हो जाता हूँ। जहाँ वो चाहता है वहां वो मुझे देख सकता है। यौमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति। उसके लिए मैं कभी भी अदृश्य नहीं होता हूँ, और वो भी मेरे लिए कभी भी अदृश्य नहीं होते। श्रील प्रभुपाद जी तो यहाँ तक कहते हैं कि जब कृष्ण प्रेम का विकास हो जाता है और हर एक वस्तु में कृष्ण का दर्शन होता है, तो भक्त के लिए ऐसी स्थिति भौतिक मोक्ष से भी बहुत परे है। ये स्टेज आत्म साक्षात्कार से ऊपर है। कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इतना, कृष्ण का सानिध्य एक रूप हो जाता है, उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाता है। हर एक वस्तु, हर एक चीज, हर एक जगह केवल कृष्ण का ही उसको दर्शन कराती है, और भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित होता है। वास्तव में कृष्ण और भक्त के अंदर बीच में एक गहरा संबंध स्थापित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो भक्त कृष्ण के अंदर विलीन होकर उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। नहीं, कृष्ण के साथ प्रेम इतना आगार होता है कि वो कृष्ण का दर्शन करता है। शीला प्रभुपाद जी कहते हैं, तदात्म्य होना तो आत्म विनाश है। उसका तो मतलब ये है कि आप अपने आप को विनाश कर रहे हो। प्रेम कैसे करोगे? प्रेम का मतलब होता है प्रेमी का दर्शन करना। प्रेम का मतलब होता है प्रेमी का आलिंगन करना। प्रेम का मतलब होता है प्रेमी को प्रेम करना। अभी यदि तुम प्रेमी के अंदर ही समा जाओगे, तो कहाँ से प्रेम करोगे? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते, भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता है। क्या करता है भक्त? ब्रह्मा जी बताते हैं, प्रेमंजना छुरिता भक्ति विलोचनेना, कि प्रेम भक्ति के नेत्रों में प्रेम का अंजन लगाता है। और संत सदैव हृदय विलोकयान्ति, हृदय के जो नेत्र है उनसे सदैव भगवान के दर्शन करते हैं। और वह श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूप, वो अचिंत्य हैं, दिखाई नहीं देते गुण, उनके इतने गुण हैं उनके अंदर जिसके जिसका कोई शुमार नहीं है। बहुत ज्यादा उनके अंदर गुण हैं, उनकी लीलाएं, उनकी महानता के विषय में चिंतन नहीं करा जा सकता। लेकिन भले ही वो कितने ही महान है, लेकिन जब प्रेम का अंजन किसी के हृदय के नेत्रों पे लग जाता है, तो संत जो हैं ऐसे नेत्रों से बहुत ही सरलता से भगवान का दर्शन कर लेते हैं। और जब प्रेम आघार हो जाता है, फिर इस अवस्था में कभी भी भगवान भक्ति की दृष्टि से दूर नहीं होते। यहाँ जैसे भगवान ने कहा, तस्य अहम् न प्रणश्यामि सच्चमेन प्रणश्यति, और न ही कभी भक्त भगवान की दृष्टि से दूर होता है। और श्रील प्रभुपाद जी अंत में बताते हैं कि यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। वो सदैव भगवान का दर्शन करता है, लेकिन योगी भी परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है, क्योंकि पहले भले वो योग साधना करता है, परमात्मा के ऊपर दृष्टि जमाता है, लेकिन फिर भगवान के विषय में भी जान लेता है, क्योंकि पवित्र हो जाता है हृदय उसका, और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण के लिए भी नहीं रहता। अब यहाँ पर थोड़ी सी समस्या है कि पहले भगवान बोलते परमात्मा को देखता है, फिर बोलते हैं मुझे देखता है, तो इन दोनों में क्या, ये दोनों में क्या रहस्य है कि योगी आकर देखता किसे है, हृदय के अंदर परमात्मा को देखता है या कृष्ण को देखता है? थोड़ा सा लगता है ना ऐसा, तो इसका उत्तर भगवान कल देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा। मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी साधना को दृढ़ कर सकूं। हरे कृष्ण।